थे और श्री संप्रदाय से दीक्षित वैष्णव थे। गुरु महाराज, मेरे को आज ही पता लगा कि बिना किसी के मात्र जी गुरु महाराज बहुत समय पहले से ही हरिनाम कर रहे थे, शुरू से ही हरिनाम कर रहे थे। और गुरु महाराज का जो दीक्षा है वो जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य श्री भक्ति प्रज्ञान केशव जी महाराज के द्वारा गुरु महाराज जी की दीक्षा आदि हुई। और 50 वर्षों से भी अधिक से गुरु महाराज संन्यास लेकर के और पूरे जगत में पूरे जगत के कल्याण के लिए ये प्रचार कार्य कर रहे हैं। और ब्रजपीठ और विश्व धर्म संसद उन्होंने गुरु महाराज को युगाचार्य की उपाधि से भी भूषित किया। और गुरु महाराज जो बहुत सारे शास्त्र हैं, जो विशेष गुरु महाराज की विशेष कृपा है, जो हिंदी भाषी लोग हैं जो बंगला नहीं जानते हैं या जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं उन लोगों के लिए गुरु महाराज सारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का सभी को ट्रांसलेशन कर रहे हैं और एक के बाद एक शास्त्र हमारे कल्याण के लिए गुरु महाराज उपलब्ध करा रहे हैं। और तो प्रश्न एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि गुरु महाराज इतना कार्य कर रहे हैं तो इस बीच यहाँ आने की आवश्यकता क्या है, गुरु महाराज को यहाँ गुरु महाराज किस लिए आए हैं? तो गुरु महाराज मेरे आमंत्रण से तो आए हैं, लेकिन कोई प्रश्न करे कि कोई भूमि सूर्य के ताप से जल करके और बंजर हो जाए, सूख जाए, तो कोई बादल अगर आ जाए तो उससे प्रश्न करे कि बादल किस लिए आया, तो ऐसा ही ये प्रश्न होगा। हम लोग जगत में त्रिताप से दुखी हैं, हृदय हमारे तप्त हैं और ये तप्त हृदयों को गुरु महाराज एक बादल के जैसे महाप्रभु की परंपरा में, और वो बादल कहता है श्यामल बादल तो है ही है लेकिन पूरा जल से भरा हुआ है, अमृत से भरा हुआ है और पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता ही है। तो हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए तो गुरु महाराज आए हैं, लेकिन साथ ही जो हमारा हृदय बंजर हो चुका है उस बंजर भूमि में ये शीतल अमृत जल के द्वारा गुरु महाराज उसमें भक्ति का बीज रोपण भी करने आए हैं, ताकि जो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में जुड़ेगा तो धीरे 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 फिर गुरु महाराज के अनुगत्य में धीरे धीरे उस वो अंकुरित होगा, अंकुरित होके वो लता बनेगा, लता में पत्ता निकलेगा और फिर धीरे धीरे उसमें फूल आएंगे और फिर अंत में कृष्ण प्रेम के फल उसमें लगेंगे, ऐसा गुरु महाराज की कृपा के साथ बिल्कुल निश्चित है। तो गुरु महाराज यही कृपा करने के लिए यहाँ आए और यही कृपा करने के लिए इस अवस्था में पूरे जगत का भ्रमण करते हैं और पूरे जगत का कल्याण के लिए गुरु महाराज शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार मेरे गुरु भाई रोहिणी प्रभु, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो माइक पर आए और भक्ति के बारे में जो चर्चा करें, गुरु तत्व के बारे में चर्चा करें और हमारे जीवों का कल्याण गुरु महाराज के सानिध्य में कैसे हो सकता है, इस चर्चा के लिए मैं रोहिणी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ माइक पर आकर के चर्चा करें।
नमो विष्णु पदाय राधिकाय।
Are you still there, Ishu Prabhu?
श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण नामिने।
Yes.
Okay.
श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मोदरे माधुर्य गुणशिचयुक्तम वरम वरम्यम पुरुषम महंतम परात्मनाय त्वं शिष्टानुमामि दिदंडिनां भक्त शिरोमणि च कृष्ण प्रणाम भक्ताय कहते चित चतन लीला मृत्साल सरम नारायण त्वं सततम प्रपदये। देखिए आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है, जैसे मेरे गुरु भाई बता रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक शुद्ध संत जब आता है तो सारे सौभाग्यों को और मंगल करने के लिए आता है। मंगल होता क्या है, इस बात में मैं थोड़ा सा यहाँ पे हर प्रकार से, चाहे वो राजनीति है चाहे वो किसी स्तर पे है, सब हमको मंगल देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मेट्रो गाड़ियां चल पड़ी हैं, कि हमें असुविधा ना हो, हम मंगल में रहें। बड़े बड़े अस्पताल आ चुके हैं ताकि हमें दुख ना आए, हम मंगल में रहें। मैंने तो अब सुना है कि 24 घंटे टीवी चलता है और 25-50 चैनल चलते हैं। आज की स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सनातन धर्म का झंडा अब लड़खड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सनातन धर्म का झंडा है क्या? हम अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, बड़ा गौरवशाली देश है, लेकिन ये जो पाश्चात्य देश की जो हवाएं चल के हमारे बेडरूम तक घुस गई हैं, जिसमें एक बाप अपनी बेटी के सामने टीवी नहीं देख सकता। हमने ये देखा है कि ये जितनी पाश्चात्य संस्कृति हमारे पास आ गई है, अब वो समय नहीं रहा जब बच्चे अपने माँ बाप की कदर करेंगे। एक बड़ी अजीब बात और मैं आपको बता दूं, अब तो आप जानते हैं हिंदुस्तान देश बहुत तरक्की पे लगा हुआ है, इसका नाम बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़ी पाश्चात्य देश की कंपनियां यहाँ पहुंच गई हैं और हर व्यक्ति के पास एक गाड़ी आ रही है, पत्नी के पास अलग गाड़ी है, पति के पास एक अलग गाड़ी है। लेकिन आप सब लोगों को ये पता है कि ये जो पाश्चात्य देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं अपने साथ क्या लेके आई हैं? ये लेके आई हैं ओल्ड एज होम। अब आपको पता है कि बूढ़ों को अब घर में जगह नहीं दी जाती है, उनके लिए बड़े बड़े घर बना दिए गए हैं गुड़गांव रोड के ऊपर। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो आपकी अब सेवा जो है बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्नी बहू जो है काम पे चली गई है और बेटा भी काम पे जा चुका है, अब बड़े बूढ़ों की ज्यादा कदर नहीं रही। ये पाश्चात्य संस्कृति का एक बुरा असर पड़ चुका है, इसीलिए स्थिति बड़ी भयानक और विकट हो चुकी है। हमारी हिंदुस्तानी जो भारतीय संस्कृति है हमें सिखाती है, पहले तो हम बड़े बूढ़ों की कदर करें, उसके बाद हम इस भक्ति और सनातन धर्म की बात करेंगे। ये भारत देश ऐसा नहीं रहा, इसीलिए हमें इन संतों की बहुत जरूरत है। हमारे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, कुमार आश्रते प्रज्ञो धर्मन भागवतम इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थतम। क्या कहते हैं? कहते भाई देखो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है, ये चार चीजें करना, आहार निद्रा भय मैथुन खाने के लिए दुर्लभ नहीं है। ये दुर्लभ इसीलिए बताया गया है, ये दुर्लभ इसीलिए भी नहीं है। अध्रुवम, ये जैसे सब मरते हैं प्राणी वैसे भी ये खत्म हो जाएगा। अध्रुवम, ये अटल नहीं रहता। अध्रुवम अर्थ अधम, लेकिन इसका एक अर्थ है, इस शरीर का मनुष्य जीवन का अर्थ है कि हम इस जीवन में संतों के चरणों में रह के उस जन्म आवागमन का जो चक्कर चल रहा है इसको रोक सकते हैं और हम पूछ सकते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। मैंने जैसे बताया बड़े बड़े अस्पताल नहीं आ चुके क्या? आप बड़े हैरान होंगे, अमरीका देश के, इंग्लैंड देश के लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां वहां नहीं कराते अपना ऑपरेशन और यहाँ पे आके करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं और बड़े सस्ते में काम हो जाता है। अब आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप एक बात और दुख की बता दूं मैं आपको, ये जो पाश्चात्य संस्कृति है साथ में और क्या लाती है आपको पता है? हर चौथे इंसान, पांचवें में से चौथा इंसान डाइवोर्स करता है, पति पत्नी का संबंध अब वो नहीं रह गया। जैसे कमीज का बटन बदलते हैं वैसे ये पति पत्नी का रिश्ता बदला जाता है। ये हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। इस पाश्चात्य संस्कृति को हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया है और ये केबल टीवी के जरिए हमें इस तरह कहा गया है कि इस जीवन का मकसद क्या है? खाना पीना सोना, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं सर्वा किम न जीवंती, अरे जीने को तो पेड़ नहीं जी रहा क्या? सर्वा किम न जीवंती, जीने को तो ये पेड़ भी जी रहा है भाई, ये भी सांस ले रहा है, ये भी बड़ा होता है, ये भी फल पैदा करता है, उस तरह से मनुष्य जीवन में हम भी बड़े हुए, हमने भी बच्चे पैदा करे। तत्रा किम न श्वासन्ति कुता। आगे बोलते हैं कि भाई वो जो लोहार की फूंकनी है, जो फूंकनी जिससे वो फूंकता है, लोहे को गर्म करता है, फूंकता है ना वो लोहार, तो क्या सांस लेने को क्या वो गर्म सांसें वो नहीं छोड़ रहा? उस तरह से हमारी ये नाली वस्त्रा की तरह, लोहार की तरह है, क्या ये भी तो सांस छोड़ रही है जैसे वो लोहार की फूंकनी? वस्त्रा सांस नहीं ले रही क्या? सर्वा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वासंती कुता, न महंती न खादंती, किम गांव में पशुवा परो। अरे भाई क्या तुम्हारे गांव के आस पास में क्या पशु चर नहीं रहे खाना, और क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे? ये तो वो भी कर रहे हैं। हम मनुष्य जीवन में आके क्या कर लिए ऐसा? यहाँ पे हमें ये समझ आनी चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए ये संत लोग, इन संतों का क्या है, तब कथामृतम तब का जीवनम, हमारे तपते हुए जीवन में ये संत लोग इस अमृत की बौछार करने आए हैं। ये अमृत की बौछार इस चीजों से नहीं आने वाली। बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हम चलवा लेते हैं, तो क्या बड़ी बड़ी मेट्रो चलाने से क्या उसमें ट्रैफिक जैम खत्म हो जाएगा? ये जो आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, 25-30 साल पहले ये अमेरिका देश में हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। इसीलिए कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य भारत, भा मतलब रोशनी, जो जो देश इस रोशनी में आसक्त है उसको भारत कहते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का जो झंडा है अब लड़खड़ा चुका है, इसको ये संत लोग ही ऊपर उठा के डरा रहे हैं। हम ये चाहते हैं खासकर जिस उत्साह से हमारे गुरु भाइयों ने नोएडा में इस प्रोग्राम का आयोजन करा है, मेरी खासकर स्थानीय निवासियों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितने भी भाई बहन आए हैं कल साथ में और लेके आएंगे, क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये सौभाग्य ये है कि हमारे इस यहाँ पे शहर में एक शुद्ध संत आया है, और क्या करेगा ये ब्रह्मांड भ्रमेती कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अरे भाई चक्कर चल रहा है ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का, इसको रोकने के लिए आए हैं, और हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति जो इस संसार का प्रेम हम जो काम वासना में लेते हैं उसको राधा कृष्ण के चरणों में डालने आए हैं। देखा जाए तो बड़े बड़े संतों के समागम में बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी तो कर ली जाती हैं, लेकिन वो क्या दे सकते हैं इसका कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरुदेव उस शुद्ध परंपरा से चैतन्य गौड़िया थारा से जो आए हैं, ये हमें सिर्फ एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हाथ ऊपर करके हम जोर जोर से चाहे बैठे चाहे खड़े हो कृष्ण को पुकारेंगे, तो वही हमें इस संसार की मोह माया से छुड़ा देंगे। जब ऐसे संत हम तो आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये बात आपके मन तक तो पहुंच सकती है, हमारे शुद्ध संतों के मुख से जब हम सुनेंगे तो यही बात हमारे हृदय में पहुंचती है। हमारा जीवन हमारे हृदय में जो बात पहुंचती है तब बदलेगा, वरना ये बदल नहीं सकता है। तो ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए मैं ये चाहता हूं कि हमारे गुरु महाराज के और भी कई शिष्य जो कई वर्षों से उनकी सेवा कर रहे हैं, लगभग 30-35 सालों से कई ऐसे गुरुदेव के शिष्य साथ, हम उनको सुनेंगे और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा, सब जोर से मेरे साथ एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा। झंडा खड़ा करना है नहीं करना है कि केबल टीवी देखना है? हमने वो झंडा सनातन धर्म का खड़ा करना, आके हमारा धर्म ले रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं ये, और हम इसको छोड़ रहे हैं क्या? किसी ने जोर से पुकारेंगे, आवाज तो इनकी ज्यादा आती है मुझे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
This is Ramchandra Prabhu. Previously, the last speaker was Rohini Nandan Prabhu. Previous to him, Radhanath Prabhu, who organized the whole festival. And now Ramchandra Prabhu is speaking.
Hello, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Shri Advaita Gadadhara Shivakati Gaurava Kuranda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram,
Hare Ram,
Ram Ram,
Ram Ram,
Hare Hare.
मुझको स्टेज पे गुरु महाराज जी ने भेजा है और कहा है कि कुछ बोलूं और मैं इस आज्ञा के अंदर बंध गया हूं कि मैं कुछ बोलूं और विशेषकर गुरु महाराज जी के लिए कुछ बोलूं। समझ लो सूरज को दिया रोशनी दिखाने आया है। देखो क्या थी रोशनी, दिए की रोशनी सूरज को। हमारे गुरु महाराज यहाँ आए हैं। कौन आए हैं? गुरु महाराज आए। गुरु गुरु मैंने क्या बताया, दो अर्थ हैं गुरु के जो मुझको अनाड़ी को पता चले हैं। गुरु मैंने भारी, गुरु यानी भारी जो हमको इस संसार में क्या दे दे, एक ऐसी चीज जो हो भारी, भारी चीज जो हमको दे और जो खुद भी हो भारी। तो भारी चीज देने वाला, भारी कृपा देने वाला क्या होगा? गुरु। तो ये भारी कृपा क्या है? तो जो मैं समझाऊं, सबसे ज्यादा निखिल व्यक्ति को, सबसे ज्यादा अधम व्यक्ति को सबसे बढ़िया चीज दे दे वो गुरु के। सबसे ज्यादा अधम को सबसे बढ़िया चीज प्रदान कर दे वो गुरु के लाता। अभी अभी हमारे रोहिणी नंदन जी ने कलयुग की थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने की। पश्चिम की हवा आ रही है, टीवी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन आ गया। मुझे बड़ी खुशी। क्यों? क्योंकि इसलिए खुशी है, अगर ऐसा नहीं होता तो शास्त्र झूठे हो जाते। सुना है कलयुग आ गया है, कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है तो शास्त्र जीवन सत्य। कलयुग का प्रभाव बड़ा ही प्रबल होता है। कैसा प्रबल होता है कि लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछते, आजकल नहीं पूछ रहे, बड़ी अच्छी बात है। क्यों क्यों अच्छी बात है? क्योंकि शास्त्रों में कही है। लेकिन एक अच्छी बात और कही गई, वो ये कही गई है कि इस कलयुग में भगवान को पाना बड़ा आसान है। तो शास्त्र की बात जब यहाँ सिद्ध होती है कि कलयुग आ गया, तो ये भी सिद्ध होती है कि भगवान को पाना बहुत ही आसान काम है। तो क्या आसान काम है? कि बड़ी ही जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसमें भी जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ जाए, उस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। खाली भगवान को प्राप्त करना ही आसान काम नहीं हो जाएगा, इससे भी ऊंचा। एक बार नारद जी ये खोजने के लिए निकल पड़ते हैं कि सबसे ऊंचा भक्त कौन सा है। खोजते खोजते वो प्रहलाद जी के पास जाके कहते हैं, आप कितने ऊंचे भक्त हैं, भगवान ने आपके लिए देखो दर्शन दिए, आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। और प्रहलाद जी ने कहा, नारद जी आप क्यों मुझको शर्मिंदा करते हैं, मैं कोई भक्त हूँ, मैं तो भगवान जब आए उनकी कोई सेवा भी नहीं कर सका। लोग बार मुझे ज्ञानी भक्त कह देते हैं, मुझे सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं, मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर सेवा भाव नहीं है। अगर सेवा भाव देखना है तो हनुमान जी में जाके देखिए कितनी चीज भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। और हनुमान जी के पास जब नारद जी गए तो नारद जी कह पड़े और हनुमान जी कह पड़े, आप मुझे भक्त कहते हैं, मैं भगवान की सेवा करने के लिए तरसता रहता हूँ लेकिन सेवा का मौका नहीं मिलता। अगर सेवा करते हुए किसी को देखना है तो अर्जुन को देखो। अरे अर्जुन की जो खटिया पे बैठकर उनके साथ एक ही पलंग पर वो खाना खाते हैं, इतना बड़ा भक्त मेरा तो दादा तो मुश्किल से उन्होंने स्वीकार किया। अर्जुन को तो कथा बना देते हैं। और जब नारद जी अर्जुन के पास गए तो उस समय अर्जुन ने कहा, अरे मेरे पास तो भगवान द्वारका से चल के आते हैं, कभी कभी आते हैं। अगर सच्ची भक्ति देखनी है तो द्वारका वालों को देखो जो भगवान के अपने रिश्तेदार हैं, कोई उनका बेटा है, कोई उनका पोता है। तो जब तक नारद जी द्वारका वासियों के पास पहुंचे, सभा में पहुंचे, कृष्ण वहां नहीं थे। तो उस समय द्वारका वासियों ने कहा, कृष्ण हमारे रिश्तेदार तो हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे दादा भी हैं, लेकिन हमारी लाल निकलती है, कभी कभी दिखाई देते हैं। अगर सच्ची में किसी को देखना है जो हमेशा हमारे पिताजी के साथ रहता है, कृष्ण के साथ रहता है, वो उद्धव जी को जाके देखो, वो है परम भक्त। और नारद जी भागे भागे उद्धव जी के पास पहुंचे हैं। और जब उद्धव जी के पास पहुंचे और उद्धव का उन्होंने गुणगान किया तो उद्धव बोलते हैं, नारद जी आप ठीक कहते हैं, मैं भी वही समझता था जब आप समझते हैं कि मेरे से बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, मैं ईश्वरी का शिष्य हूँ, चौबीस घंटे राम कृष्ण मेरे पास रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुझे ले जाते हैं। मेरे को ऐसा वहम था लेकिन मेरा वहम तोड़ा है स्वयं भगवान कृष्ण ने, जब मुझको उन्होंने ब्रज में भेजा, जब मैं उन्होंने ब्रज में भेजा और मैंने नंद बाबा को देखा, जब मैंने यशोदा मैया को देखा, उन लोगों को देखा, तब मुझे पता चला कि तो कैसे है। जब मैंने गोपियों को देखा तो उस समय मेरे पैरों के नीचे से बच्चे नहीं करती, मैंने तब देखा कि वास्तव में कृष्ण वहीं रहते हैं और वो कृष्ण के साथ। असली प्रेम है तो गोपियों का कृष्ण के साथ, असली प्रेम है तो राधा जी का कृष्ण के साथ, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। जो इतना बड़ा प्रेम है बढ़कर कोई और प्रेम नहीं हो सकता है। नारद जी को उद्धव जी ने बताया, जब नारद जी की आंख तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया, तब उन्होंने घोषणा की, सबसे उत्तम कोटि का प्रेम कौन सा है, जो गोपियों का है, और उसमें भी सबसे अधिक प्रेम है राधा रानी का, और उसमें सबसे अधिक प्रेम उन्हीं जनों का है जो राधा जी की सेवा करते हैं, राधा जी को कृष्ण से मिलाते हैं। तो गुरु जो सबसे गुरु सबसे भारी काम करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे घटिया से घटिया व्यक्ति को ये वाला प्रेम दे दें जो ब्रज का प्रेम है, ब्रज वासियों का प्रेम है, ये गुरु की परिभाषा कहलाती है। ऐसे प्रेम देने वालों को, ऐसा प्रेम देने वालों को जो जो व्यक्ति आगे आता है वो कौन हो सकता है, कोई ऐसा गहरा तत्व नहीं सकता, किसी संसार का तत्व नहीं सकता। ये वही होता है जो उधर से भेजा जाता है, किधर से, उस लोक से भेजा जाता है, जहाँ राधा जी खुद उनको भेजती है, वही व्यक्ति आता है और आकर आपके सामने साधारण से व्यक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है और आप उनको जिस चाहे जैसे चाहे पकड़ ले। आप इस पेट के आगे बैठ जाइए महाराज, बैठ गए। आप इस आसन पे आगे बैठ जाइए महाराज, बैठ गए। और बड़े प्रेम से ऐसा प्रेम दिखाते हैं, ऐसा प्रेम बांटते हैं कि हम सारी दुनिया के प्रेम को छोड़कर उनको प्राप्त करके और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो राधा रानी के साथ लेकर हम कृष्ण और राधा जी का प्रेम प्राप्त करेंगे, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रेम से उनके सान्निध्य में बैठ के करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इस परंपरा को जो ऐसा प्रेम देता है वो परंपरा गौड़िया परंपरा कहलाती है। तो इस गौड़िया धारा के हमारे गुरुदेव अग्रणीय, इस समय शिरोमणि और सर्व विश्व में प्रचारक हमारे सामने, साधारण व्यक्ति दिखने में छोटे से पतले से, लेकिन पास में आके देखिए इतनी ताकत है, आपके सारे दुनिया के अपने पास ले आएंगे, अपने साथ छोड़ देंगे और वही हमारा प्रेम उठाकर कहाँ दे देंगे, राधा कृष्ण के चरणों में दे देंगे। इसे गुरु कहते हैं। और खाली वृंदावन में ये काम नहीं कर रहे, मथुरा में ये काम नहीं कर रहे, दिल्ली में आके ये काम नहीं कर रहे, नोएडा में आके काम नहीं कर रहे, सारे विश्व में। मैं तो अब हैरान हो गया हूँ, दुनिया का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर गुरुदेव का प्रचार और प्रसार नहीं हो। उमर जानते हैं, हम लोग रुपए भी चेक पे रुपया लिखते हैं ना, अमाउंट 1 करोड़ 1 करोड़ ओनली, तो मैं भी लिखूंगा 86 ओनली, 87 ओनली, और गुरुदेव की 87 ओनली, और इस 87 ओनली हॉल में सारे विश्व में प्रचार करें। देखो भाई एक बार समझना, मैंने क्या देखा, पानी पीने की एक पाइपलाइन आ रही है, ठीक है, और उसी के साथ एक सीवर की पाइपलाइन भी जा रही है, दोनों पाइपलाइनें अपनी अपनी जगह हैं। एक आपके घर के सीवर का पानी को ले जाती है गंदा पानी, और एक एक आपके घर में पीने का पानी देती है, लेकिन दोनों ही पाइपलाइनें आपस में दोस्ती कर बैठी है बीच में। कैसे, एक चूट के बाहर निकलता है पानी, और वहीं पे दूसरी भी चूट के पानी बाहर निकलता है, और दोनों पानी आपस में मिलना शुरू कर देती है, और जब वो मिलना शुरू कर देते हैं, पीने वाले पानी में सीवर का पानी चला गया, सीवर वाले पानी में और पीने वाला पानी सीवर में, और सीवर का पानी पीने वाले में चला गया, और पीने वाला पानी अब आपके पास आ रहा है। कौन सा पानी आ रहा है, तो इस दुनिया में जितने भी इस समय प्रचारक है वही वाला पानी आपको सप्लाई कर रहे हैं। कौन सा पानी, जिसमें सीवर के पानी और पीने वाले पानी के पाइपलाइनों में क्या हो गई है, दोस्ती हो गई। लेकिन लेकिन जो पाइपलाइन बिल्कुल खालस रहती है, टूटती नहीं है, कहीं से उसमें इधर उधर आना जाना नहीं हो सकता है, जिसके अंदर सीवर का पानी नहीं घुस सकता, उस पाइपलाइन को गोरिया पाइपलाइन कहते हैं। और गोरिया पाइपलाइन के हमारे सरकार, हमारे श्री यहाँ पे मौजूद है, और आपको वो धारा का जल पिलाना चाहते हैं जिसको पीकर आप खुशी नहीं। अरे राम राम, अरे
are you still there, Isha Prabhu?
I'm here.
Okay, Gurudev's starting now.
Yeah, thank you.
Tomorrow we'll have the movie for sure. Don't worry.
Did you find Vasanti?
हो जाऊ, वो किंग ने कहा
कृष्ण भेज दिया, ओ कृष्ण हमारे ऋणी हो गए। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा ऋण से ऋण नहीं होता, तुम कृपा करके अपने शील स्वभाव से ही मुझे क्षमा कर दो, किंतु मैं तो तुम्हारा ऋण राधा जी कृष्ण के विरह में कैसी पागल हो रही है। एक भौरे को कृष्ण का दूध समझ रही और भौरे को अच्छी बुरी बातें सुना रही है। सीता जी को रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, पागल नहीं हुई, इसलिए गोपियों का प्रेम, ब्रज का प्रेम, विशेषकर राधिका जी का प्रेम सर्वोच्च। हम लोग किसी को जो गोपियों का प्रेम है जीते कि कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा प्रेम जो रागात्मिक प्रेम कहलाता है उसको देने के लिए जो हमारे गुरु परंपरा से चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने दिया है, उसका विश्व में प्रसार करें। विश्व के सभी लोग आदर के साथ में सुनते हैं, लाखों लोग आप लोगों के सामने भी यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, हर बार छोड़ करके भिखारी बनकर अपने देश को धर्म को सबको जलांजलि देकर आज लाखों लोग उस प्रेम में डूबना चाहते, इसलिए आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग भी और सब देवताओं का भजन पूजन छोड़कर कृष्ण के भजन करने से ही हमारा सब जीवन सार्थक होगा। देवताओं का भजन करने से देवलोक में जाएंगे, किस जगत में आना पड़ेगा, देवता देवी आपको इस लोक में धन धान्य दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम आवागमन बंद नहीं करता, इसलिए कलयुग के प्रारंभ में गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में हमारे भारत वर्ष के 88,000 ऋषि लोग एकत्रित विचार करने लगे, बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है, उसमें थोड़ा टाका फल हमारे रोहि नंदन जी ने बसवाया, थोड़ा भयंकर इसे कैसे बचा जाए। उस समय में सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से जो हमारे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं उनसे पूछा, तब उन्होंने ये उत्तर दिया, प्राण अल्प आयुष युगे जना मंदा तो मंद मतयो मंद भाष्या उपस्थित अत साधो अत्र गतारं समुद्रिष्य मनीषया गृहिण प्रधानो जिनात्मा। प्रश्न किया कलयुग है, आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष की, वो भी ठीक नहीं, बच्चे तंग में ही मर जाए, युवावस्था में मर जाए, या 100 वर्ष ना है कुछ और मरना जरूर है। और कलयुग कैसा बड़ा भयानक मंद सुमंद मतलब, इसमें मनुष्यों की बुद्धि मंद होती है, मंद माने क्या, अपने शरीर को देने वाले विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान को लोग भूल जाते हैं और कुछ विषयों में रम जाते हैं, देह में और देह से संबंधी लोगों में ममता होती है और फिर संसार चक्र में पड़ते हुए गधे सुकल इत्यादि की जोड़ी को नाश करते, इसलिए आप सब सर्वज्ञ हैं, आप बतलाइए तो समस्त शास्त्रों का सार है, यदि हम लोग योग्य हैं तो बताइए हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा कैसे प्रसन्न, यह नहीं पूछा शरीर कैसे प्रसन्न होगा। पहली बात समझो, हम शरीर नहीं है, यह शरीर हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब ठीक है ही है, एक दिन अवश्य बूढ़ा होगा, बूढ़ा होना होगा जो जन्म ग्रहण किए हैं, और एक दिन अपना सारा सब कुछ छोड़ करके इस संसार से शरीर को छोड़कर नहीं जाना, साथ में एक फालतू पैसा एक पैसा भी नहीं जाएगा, ये क्या करो कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा तो क्या केवल राष्ट्र भक्ति उसके साथ में जा सकती है। इसलिए जगत का जो सार है आप हमें बतलाइए, सुन करके वो बोले आत्मा प्रसन्न तभी होगी तो वही सुनता करो धर्म जगो भक्ति करे अहे अप्रतिहता जयात्मा संतुष्ट। निश्चित रूप में सारे प्राणियों का केवल मनुष्य का नहीं, देवता गंधर्व पशु पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सबका यह परम धर्म है क्या, जो अभोक्षक पुरुष इंद्रियाती पुरुष जो भगवान स्वयं कृष्ण है उनके प्रति अहेतुकी भक्ति हो, अहेतुकी मैंने जगत के किसी लाभ के लिए भगवान की भक्ति न हो, और कई धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में लगी रहने वाली हो, किसी के द्वारा आत्मा प्रसन्न होगी, धन धान्य से योग के अभ्यास से आजकल योग भी खूब चल पड़ा है, योग किससे कहते हैं जानते नहीं है, शरीर का व्यायाम कसरत ही योग नहीं है, शरीर कुछ दिन के लिए अच्छा भी तो मरेगा जरूर, योग के बड़े बड़े जो टीचर हैं वो भी मरेंगे, इसलिए योग है क्या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और योग हो, और यह मिलन होगा वृंद के प्रेम से ही मिलन होगा और किसी से नहीं, और इसी से आत्मा प्रसन्न होगी। हमारे रूप गोस्वामी ने बताया अन्य अभिलाषिता सुनना ज्ञान कर्म आचरणाधिकम अनुकूल्य कृष्णानुशीलन भक्ति कहते हैं किसको, शिव जी के मंदिर में गए और चौपट को दबाने लगे, हमारा लड़का ठीक हो जाएगा बीमार पड़ा है तो एक रुपये का बताशा चढ़ाए, ये भक्ति नहीं है, भक्ति है अनुकूल कृष्णानुशीलन अपने सारे इंद्रियों से जो कुछ चेष्टा होती है वो कृष्ण के लिए हो, कृष्ण के अतिरिक्त और नहीं, और वो जो चेष्टा हो कृष्ण के वो प्रसन्न करने के लिए, ये भक्ति जो कुछ करते हैं पाठ ज्यादा भी हो टू टू प्लीज कृष्ण, अपने को प्रसन्न होने के लिए नहीं, यही सब गुरु में कमी थी, सूर्य ने तपस्या की भगवान का दर्शन पाया किंतु किसके लिए, राज्य के लिए भगवान ने उनको 36,000 वर्ष के लिए सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया, प्रहलाद पर ताने लगे जा रहे मैंने काट खोलते खोलते काट का टुकड़ा और मुझे पारस मणि मिल गई, मैंने उसे फेंक कर दीजिए पीछे मांगा भगवान, विषयों से सदा भी सुख नहीं हो सकता है, कहते हैं ये तो भक्ति हुई निरंतर के भाई निरंतर, और अन्य अभिलाषिता जगत की कोई कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई कामना न रहे। भगवान की सेवा करते हैं दो हजार का लोग जाते हैं राजा बन जाते भक्ति गड़बड़ होती है ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज जी भक्ति करते हैं किंतु बदलायन उनके भगवान को भूख नहीं लगती पक्के नहीं है पानी की प्यास नहीं लगती उनकी क्या कोई सेवा करें सर्वत्र भगवान को देखते हैं भगवान ने सर्वत्र इसी तरह से प्रहलाद महाराज की अपेक्षा में अम्बरीश महाराज से इसका हम लोग वर्णन करें उनसे श्रेष्ठ हनुमान जी प्रेमी भक्त उनसे भी श्रेष्ठ पांडव लोग प्रेम पर भक्त और उनसे भी प्रेमासु उद्धव इत्यादि और वो भी जिनके चरणों में बंदे नंद नंद की जो ब्रज की जो महिलाएं हैं ब्रजवासी उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ हमारा जीवन प्राप्त हो गया उनकी प्रेम के जीवन में जो उनके मुख से हरि कथा निकली है साथ देने वाली है। इस प्रकार उसकी शिक्षाएं दी और भागवत कैसे प्रकाश हुआ इसका वर्णन किया। अभी हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत सिंह महाराज जी आपको वह चरित्र अच्छी तरह से सुनाएंगे।
वृंदावन बिहारी राम की जय 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 श्री राम। कृष्ण नाम तु भजने मनुआ भव सागर कर जाएगा जो न तुमने भजन किया फिर पछे पछताएगा।
जगत आप लोगों को सुन करके आनंद मैं उस शरीर अस्वस्थ होने के कारण
शांतिपूर्वक आओ
जैसा गुरु महाराज का आदेश है आप सभी भक्तों से प्रार्थना करके अपनी जगह पर ही बैठे रहिएगा। गुरु जी जाएंगे लेकिन आज ये कथा का आरंभ हुआ है। केवल अभी आज के अलावा तीन दिन और कथा है, कल परसों और रविवार को, और कल कथा के बाद एक आपको वीडियो कैसे दिखाएंगे। वीडियो कैसे के माध्यम से हम आपको वृक्ष के कुंडों का दर्शन कराएंगे, सारे वृक्ष के कुंडों का दर्शन। गुरु महाराज ने अपने ऊपर ये सेवा ली है, जो वृक्ष के जो अलग अलग कुंड है, शिराधा कुंड, श्याम कुंड, विशेषकर कालेनाग के बहन की लीला, कालेनाग के लीला हुई वो कुंड, वो सारे कुंडों का पुनरुद्धार गुरु जी ने ये विशेष अपने पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने भक्तों को लगाया है उसमें। तो आपको जो कुंडों के दर्शन के माध्यम से ब्रज दर्शन यही मारा में बैठे बिठाए ब्रज दर्शन होगा, परसों बहुत सुंदर आप लोगों के लिए कथा के बाद एक भजन संध्या होगी, और रविवार को 1 अप्रैल को कथा के बाद ब्रज की होली हमारे भक्त लोगों के माध्यम से होगी। तो आपसे प्रार्थना है आप आज अकेले आए, कल अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, सभी को लेकर के आइए। जो शुद्ध भक्ति का धारा जो प्रवाह हो रहा है उससे सभी लाभान्वित हो, इसके लिए आपसे प्रार्थना। आप सभी लोगों को लेकर के आइए। गुरु महाराज कल भी होंगे, परसों भी होंगे, और 1 अप्रैल यानी के रविवार को भी यही पर ही रहेंगे। धन्यवाद। मैं दीप महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ, मैंने बीच में उनको। और कीर्तन 4 बजे से शुरू होगा। आप लोगों से प्रार्थना है, विशेषकर जो हमारे भक्त लोग हैं, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, उन लोगों से प्रार्थना है आप सभी 4 बजे यहाँ ठीक समय पर उपस्थित हो जाइए। 4 बजे से कीर्तन होगा, बीच में गुरु महाराज आएंगे, कृष्ण कथा करेंगे, और गुरु महाराज का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा, हमारी प्रार्थना है स्वास्थ्य अगर ठीक रहे तो ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अगर गुरु महाराज बीच में भी जाना चाहते हैं तो बाकी सन्यासीगण गुरु महाराज के द्वारा ही ज्वाइन किए गए, गुरु महाराज का ही दर्शन उनमें होता है, वो भक्त लोग हरी कथा सुनाएंगे, तो हम लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। गुरु महाराज केवल जाएंगे, आप लोगों से प्रार्थना कोई भी अपनी जगह से उठ करके कार्यक्रम को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। हरे कृष्ण।
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतम गोस्वामी महाराज तथा मंच पर आते ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तदीय चरण युगल युगल में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणति ज्ञापन करता। तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद, समस्त वैष्णवजन, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों तथा भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम वेदन। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ के सौजन्य से पूज्य श्री राधानाथ प्रभु और समस्त भक्तजनों के विशेष आग्रह से यहाँ पर इस समारोह और श्रीमद भागवत कथा तथा श्री गुरु जी के पदार्पण पर हम सभी लोग आप सभी के आभारी हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर भगवत कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए संपर्कित हुए। परंतु हम तो एक जड़ हैं कि गुरु जी की आज्ञा हुई है कुछ नारद जी के उपाख्यान से कुछ कथाओं को वर्णन करने के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है कि हम लोग भगवत कथा श्रवण कीर्तन करने को योग्य कहा है, कि हम जड़ लकड़ी और पत्थर से भी दैव दिव्य जड़ हैं, परंतु गुरु भागवत वे चेतन वस्तु है। हम सबके हृदय में आविर्भूत होकर चेतनता को प्रदान करें और हम सबके हृदय में वो जागृति हो उन कथाओं को सुनने को तथा कीर्तन करें। इसलिए हमारे दृष्टता को क्षमा करें, क्योंकि हम अज्ञ हैं। उनकी आज्ञा से जो कुछ सुनने को मिला है उन्हीं में से दो एक शब्द को प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी अभी आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है तथा गुरु जी ने यह भी वर्णन किया है कि हम सबके हृदय में बहुत सारी कामनाएं होती, उन कामनाओं के वशीभूत होकर बहुत से देवी देवताओं की आराधना करते हैं, बहुत से मार्गों पर चलते हैं, परंतु शांति के पथ पर हम पहुंच नहीं पाते। हमारी कमियां कहां? भगवान ने गीता में कहा है कामे त्रिस्तरी कामना वासनाओं के द्वारा जो कि लोगों का हृदय भरपूर है, इसलिए उन कामनाओं के पूर्ति के लिए बहुत से पंथ पर चलते हैं और देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कुछ फल प्राप्त होता है पर वह पूर्ण नहीं। बहुत से लोग तो मेरी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं, इस कारण मेरे तत्व को न समझने के कारण उनके जीवन में ये भूल भ्रांतियां भी है और इतनी कमियां हैं। मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना बीजे तस, जीवन में जितनी इच्छाएं की कामनाएं की सब व्यर्थ हो गया। मोघ कर्माण सारा कर्म भी व्यर्थ चला गया और मोघ ज्ञाना जीवन में जो कुछ ज्ञान उपार्जन किया वह भी व्यर्थ हुआ। अंततः हतचित्त हो करके हाय हाय करते रहते। वास्तविक शांति का पथ एकमात्र भक्ति का मार्ग है, अन्यथा कर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलते हुए कदापि जीवन में शांति नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर भक्ति योग का वर्णन करने के लिए से गुरु जी यहाँ समुपस्थित हुए हैं और यहाँ की भावनाएं हैं कि भक्ति योग ही एकमात्र संसार में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। वेदांत का यही कहना है भक्ति रेवैनम नयति भक्ति रेवैनम दर्शयति भक्ति वश पुरुष भक्ति रेव प्रिय। भक्ति ही ऐसी वस्तु है जो कि भगवान के पास एक साधक जीव को पहुंचा देती और भगवान का दर्शन कराने की क्षमता भक्ति के पास में होती है। इसलिए भक्ति योग का जिसने अवलंबन किया उसी को ही प्रभु का दर्शन मिलता है, उन्हीं का सान्निध्य प्राप्त होता है और भक्ति के द्वारा ही भगवान बस में आते हैं। वे भक्तों के भक्ति के अधीन होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में इस भक्ति की पराकाष्ठा उनकी महिमा का वर्णन हुआ है। इसी के प्रसंग में ही अभी अभी आपने सुना सवई पुंसाम परो धर्म, जो कि प्राणी मात्र का वो परम धर्म है, अधोक्षज भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो। तो हमें भागवत क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहते हैं, कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें जीवन में कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग नहीं और संसार सुख की लालसा नहीं, भौतिक सुख की आशा नहीं, तो मुक्ति बोले मुक्ति तो भी नहीं चाहिए, मुक्ति तो वह बाघिनी है जो कि निगल जाती है, और संसार सुख की अभिलाषा ये भी सर्वनाश का जड़ है जो कि संसार रूपी मरुभूमि में हम चल रहे हैं उसमें झुलसते हैं। अब हमें जीवन में क्या चाहिए, एकमात्र भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं, संसार का सुख नहीं, उसके कारण ही तो हमारे लिए बंधन रहता है और हम इस बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए श्री नारद जी ने व्यास जी को इस भक्ति योग का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, हे पराशर नंदन, जिस संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, यही जीवन में पुरुषार्थ के रूप में समझते हैं, परंतु इसके द्वारा जीवन में शांति नहीं मिलती है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है, अज्ञान समीर नाम कहीं धर्म अर्थ काम संख्या आदि यही सब अज्ञान तम कपटता सबसे बड़ी कपटता है कि हम धर्म को मान रहे हैं।
जीवन में
I'm going to sign off now because Gurudev just left.
Okay, did you find Vasanti?
No, she never came.
Oh.
Maybe they got lost downtown. But for sure they'll be webcasting tomorrow.
Okay.
And Goku Chandra Prabhu is filming.
Oh, ecstatic.
So we can send that to you.
Okay, thank you.
But for live, tomorrow we'll arrange it.
Okay. Bring this cell phone just in case something happens with the.
Right, for sure.
Okay. Thank you, Didi.
Sure.
Hari, really.
Okay. Hari, so, that morning, just before I left, I gave the thing, the cartoon that I told you about.